Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company specific queries. Well, you may call us on the numbers 233-1444-2342-1050 and 233-1-0464. If you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. I'm your anchor, Lalema Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Subodh Mishra.
नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज सोमवार है और हर सोमवार की तरह आज भी हम आपके सवालों के जवाब देंगे। व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़े सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। लेकिन याद रखें, हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। प्रश्नों के उत्तर देने और चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा। नमस्कार शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
पहले हेडलाइंस के साथ लालिमा
जी। थैंक यू सुबोध। यस फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस क्लाइंब ओवर 1%, सेंसेक्स सर्जेस ओवर 1070 पॉइंट्स, निफ्टी क्लोजेस अबव 23,650। इन द फॉरेक्स मार्केट रुपी राइजेस अगेंस्ट द यूएस डॉलर फॉर द 9th स्ट्रेट सेशन एंड क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज, ब्रेंट क्रूड ट्रेड्स एट $72.66 पर बैरल।
देश के शेयर बाजारों में आज तेजी का रुख, सेंसेक्स 1070 अंक ऊपर, निफ्टी 23,650 के पार। मुद्रा बाजार में लगातार 9वें कारोबारी सत्र में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में तेजी, ब्रेंट क्रूड ऑयल के भाव $72.66 प्रति बैरल पर। आइए पहली खबर पर नजर डालते हैं कि आज देश के शेयर बाजारों का क्या हाल रहा है। देश के शेयर बाजारों में लगातार छठे कारोबारी सत्र में तेजी का रुख बना रहा और प्रमुख सूचकांकों में 1% से ज्यादा की बढ़त देखी गई। बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और रियल्टी क्षेत्रों में तेजी से बाजार में उत्साह बना रहा। साथ ही विदेशी निवेशकों की बिकवाली पर लगाम लगने से भी कारोबार में सकारात्मक रुख कायम रहा। 7 फरवरी के बाद आज सेंसेक्स पहली बार कुछ समय के लिए 78,000 से ऊपर निकल गया, जबकि निफ्टी 6 फरवरी के बाद आज पहली बार कारोबार के दौरान 23,700 से ऊपर निकल गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1,079 अंक यानी 1.4% बढ़कर 77,984 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 308 अंक यानी 1.32% बढ़कर 23,658 पर रहा। बीएसई के अन्य सूचकांकों में भी बढ़त देखी गई। मिड कैप इंडेक्स 1.3% और स्मॉल कैप में 1.1% से ज्यादा की बढ़त देखी गई।
ऑल राइट, वी आर नाउ जॉइंड बाय संजीव कॉलिंग अस नॉट टू फार फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम गुरुग्राम। जी संजीव जी, अपना सवाल पूछिए। जी
नमस्कार जी।
नमस्कार जी।
हाँ जी, जैसे कि गोल्ड हमेशा ऊंचा लेता रहता है, ऊंचाई पे जाता रहता है, ये कभी नीचे आता नहीं दिखा, वो भविष्य में देख लिया। और जो इस समय बजट आया था उसमें 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं था। क्या एफडी पे भी, अगर एफडी है तो उसमें अगर अभी टैक्स लागू है कि नहीं है, क्योंकि ब्रांच वाले बोलते हैं कि इस पे कोई नियम अभी नहीं आया, बाकी इनकम पर 12 लाख तक है, इसके बारे में जरा बताएंगे।
संजीव जी, आपने दो तीन मुद्दे उठाए हैं। मुझे लगता है कि जो इसमें महत्वपूर्ण जो आपका सवाल है वो फिक्स्ड डिपॉजिट को लेकर के है। उसके कर की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो आपके 40,000 और 50,000 की बात है। लेकिन हाँ, टीडीएस का एक नॉर्म है जहां पर बदलाव किया गया है, वो है सीनियर सिटीजन के लिए, जो कि वहां पर 1,00,000 रुपए तक का जो उनका इंटरेस्ट इनकम है उस पर उनको कोई टीडीएस नहीं लगेगा। और जो 60 साल से कम उम्र के लिए हैं उनके लिए जो दर पहले 40,000 रुपए हुआ करती थी उसे 50,000 रुपए कर दिया गया है। ये फाइनेंस बिल 2025 का हिस्सा है और जैसे ही इसको संसद से मंजूरी मिलेगी उसके बाद ये लागू होगा। उम्मीद है कि पहली अप्रैल 2025 से लागू होगा। अभी के समय में जो पुरानी दरें हैं वो चलती रहेंगी, तो फिक्स डिपॉजिट और जो भी इंटरेस्ट इनकम होता है आपको बैंक डिपॉजिट से, उसके लिए नई व्यवस्था प्रस्तावित है जो कि पहली अप्रैल 2025 से होगी।
जी, जयपुर से जितेंद्र हमारे साथ हैं। जितेंद्र, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
हाँ, अच्छा सर, जैसे एक पूछना था एक चीज कि जैसे 15-20 साल के मतलब हिस्ट्री इतिहास में कौन सा फंड अल्टीमेटली अच्छा करता है, लार्ज कैप या मिडिल वाला, जैसे निफ्टी 50 या उसके ऊपर वाला, अगर 15-20 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो लास्ट में कौन अच्छा करता है एकदम?
देखिए, वैसे तो म्यूचुअल फंड के लिए रविवार का दिन ज्यादा बेहतर होता है जब आपके लिए विशेष तौर पे मार्केट मंत्र में म्यूचुअल फंड पर चर्चा होती है। लेकिन एक सामान्य समस्या में ये कह सकता हूं कि जब आपका टाइम होराइजन 15 से 20 साल का है तो आप अगर लार्ज कैप में रखते हैं वो ज्यादा अच्छा है, और लार्ज कैप के साथ साथ कुछ उसका जो एलोकेशन है वो आप बैलेंस या मिक्स्ड फंड में भी कर दें तो वो ज्यादा बेहतर होगा।
All right, we are connected to Bengaluru and a very regular listener and a caller, N.R. Prasad ji, is with us. Yes, Mr. Prasad, please ask your question. Yes.
Hi, good evening, Market Mantra.
Good evening.
This is N.R. Prasad from Bangalore.
Ji.
Hello, Lalima ji. Hello, Subodh ji.
Hello.
Hello, Mishra ji. Good evening to you. There are two questions.
Ji.
Mr. Mishra.
No, Mr. Sinha, we have Shishir.
In just a 6 trading session, including today, market valued 4,155 points up. Really cheering news for all the investors and traders. But point to be noted here is, most of the sectors rallied, but except for the IT. Any specific reason for this? And actually, what triggered for rallying for 4,155 points? My second question is, with the tariff, now anti-dumping duty is also imposed. So is there going to be, for our chairs, is going to be any dent in the coming days? Thank you. These are my two questions, sir.
Coming to your first question, which is regarding more than 4,000 points rise in stock market. See, in US after this Federal Reserve meeting, the indications are that the interest rate are going to be lowered. And since the inflation in US is expected to be on the higher end and the economic indicators in USA are not showing very good signs, so that was the reason why the Federal Reserve has given indication about the rate cut. And whenever there is a rate cut sign, it's a very good news for the stock market. And at the same time, you must have seen that after we have during the last 1.5 month we have seen large scale of selling that made the stocks very valuable, that's very attractive, and that is why people are putting money into that. Coming to a specific question about the IT, globally we are seeing that the IT expenditure, especially for the outsourced services, are coming down. We are seeing some kind of slowdown in Europe. Mm-hmm. Also in US, we are not seeing the kind of rise in the corporate spending, and that is the reason why we are not seeing any kind of rally in the IT, unlike any other sector. So this is the answer to your first question. Coming to your second question about, if I can remember correctly, he talked about something. I'm just trying to recall, Mr. Prasad. I will come back to you after that. Before that, you can take the phone call from Hitesh.
Shishir, one small point. Has IT reached its saturation point, considering the fact that now we are all talking about AI, and AI is the future? Does it give IT a bit of a hit?
No, I don't think so. I don't think so because the IT sector is one sector which is always on a kind of evolving mood. It's not something that they are in. I mean, once they have developed a software and they will be in a, I mean, okay, we have done something and we are now going into a sleeping mode. That won't happen. So I don't think that IT sector has reached a saturation stage. It all depends upon what kind of corporate spending is there. And we are seeing, when you are seeing a slowdown in Europe, when you are seeing some kind of slowdown in US, that is going to impact the IT sector, and that is what happening in the stock market.
Right.
अगले कॉलर हैं पुणे से हितेश. हितेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
हाय सर, गुड इवनिंग. सर, मेरा क्वेश्चन इंश्योरेंस से लेकर है. मैंने 2024 में अपने सिस्टर के लिए 3 साल के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का पेमेंट किया था. अभी पॉइंट ये है कि मेरी सिस्टर का जो नेशनलिटी है, पहले इंडियन था, अब उनका यूएसए हो गया है. तो अभी जो इंश्योरेंस है 2026 तक है, तो क्या यूएस से जो एनआरआई हो गए हैं उनके हिसाब से भी उनको इंश्योरेंस के बारे में, मुझे मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगर वो उनको इंश्योरेंस कंपनी को बताना पड़ेगा या उनको बेनिफिट मिलेगा, कभी ये पूछना.
हितेश, जो भी मेडिक्लेम पॉलिसी आपने ली है वो इंडिया के लिए है, भारत के लिए है, कि भारत में अगर कोई इलाज कराना तो आप कर सकते हैं. जब भी आप बाहर की बात करते हैं तो आप ओवरसीज मेडिक्लेम लेते हैं जिसकी प्रीमियम की दरें अलग होती हैं, वो अलग अलग समय के लिए होती है. और अगर आप कहीं लंबे समय के लिए, जैसे 6 महीने के लिए, जैसे एनआरआई आपने कहा कि आपकी बहन एनआरआई हो गई है, तो यानी कि 6 महीने से ज्यादा का समय वो विदेश में गुजार रही है, तो ऐसी सूरत में आपको वहां पर की पॉलिसी का ध्यान में रखना होगा. जो आपने यहाँ पॉलिसी ले रखी है वो स्पेशली डोमेस्टिक मार्केट के लिए है. आप अगर उनको बताएंगे भी इंश्योरेंस कंपनी को, तो वो आपको ओवरसीज मेडिक्लेम के लिए ही आपको आग्रह करेंगे. दो अलग अलग पॉलिसी है वो.
Right. Certainly, insurance companies wouldn't like to spend in dollars for somebody who is not residing in their country, in our country. All right, let's move on. Very close by, we are broadcasting from Delhi, and from Delhi we have Sanjeev Bharadwaj. Ji, Sanjeev ji, sawal puchi.
Sanjeev ji, sampark toot gaya hai hamara. Ji.
All right, let's meanwhile take a look at the stocks in detail now. The benchmark domestic equity indices today extended their upward momentum for the 6th consecutive session to settle with gains of over 1% each. The market sentiment was driven by rally in banking, financial services and realty sectors amid renewed optimism over reversal in foreign fund outflows and bargain buying. The Sensex had crossed 78,000 for the first time since February 7, while Nifty 50 had surpassed 23,700 for the first time since February the 6th in intraday trade today. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, surged 1,079 points or 1.4% to close at 77,984. The National Stock Exchange, Nifty 50, jumped 308 points or 1.32% to settle at 23,658. The broader market indices at the BSE also logged gains. The mid-cap index advanced over 1.3% and small-cap index added over 1.1%. In the Sensex index, 23 out of 30 companies ended in positive territory. Among the top gainers, NTPC surged over 4.6%, Kotak Bank gained over 4.5% and SBI Bank increased more than 3.7%. Conversely, among the top laggards, Titan dropped over 2.6%, Indus In Bank slipped over 2.4% and Zomato lost over 2.1%. In sectoral indices at the BSE, all 21 sectors logged gains. In the top gainers, BankEx rose over 2.5%, utilities added more than 2.4% and Power added over 2.3%.
Ji, agle caller intezar kar rahe hain Delhi se, Sanjeev Bharadwaj. Sanjeev, swagat hai aapka, sawal puchein.
मिश्रा जी, नलिमा जी, नमस्कार. मेरी रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन के रूप में
जी,
म्यूचुअल फंड सेगमेंट में मोनिका हलन और विनोद भट्ट, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है एज ए एजुकेशन देने में. अब हम इनको म्यूचुअल फंड सेगमेंट में कब सुन सकते हैं? रिक्वेस्ट भी है, आप प्लीज से नोट कीजिए.
चलिए ये हम अपने अथॉरिटीज तक बात पहुंचा देंगे एंड देन लेट्स सी व्हाट द डिसीजन टेक्स व्हाट डिसीजन दे टेक फॉर द मोमेंट लेट्स मूव ऑन
बिफोर दैट मिस्टर प्रसाद आई जस्ट रिकॉल्ड व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन नो ही वाज टॉकिंग अबाउट रेसिप्रोकल टैरिफ एंड टैरिफ व्हिच हैज बीन इंपोज्ड ऑन स्टील एंड एल्युमिनियम सेक्टर फ्रॉम द 12th ऑफ मार्च एंड द रेसिप्रोकल ट्रैफिक व्हिच टैरिफ व्हिच इज कमिंग इनटू इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2 सो मिस्टर प्रसाद माय अपोलॉजी फॉर फॉरगेटिंग द सेकंड क्वेश्चन at that time but let me answer that question answer to that question since the steel and aluminum sector since some duty has been imposed from March 12 there have been some impact on these two sector but now the most important thing is the April 2 deadline because that is the deadline from which the reciprocal tariff is going to be imposed discussions are going on and hopefully we will have some solution but we believe that there will be some kind of duty impact on our industries because our tariffs on some of the sectors are slightly on a higher end as compared to US but please remember that we are an emerging economy and our tariff cannot be the same like a developed nation
right all right we now connected with Mysuru and Kumar Naik is with us yes Kumar ji are you there online with us
yes ma'am good evening
good evening please ask a question to
sir sabhi ko show mein maujood sabhi ko main namaskar karta hu Karnataka ke Mysuru se main Kumar Naik bol raha hu sir
ji namaskar ji
मैडम मेरा सवाल ये है एक्चुअली मैं एक विजुअली चैलेंज हूँ ब्लाइंड पर्सन तो मेरा ये जानना है किस सेक्टर में एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट में हमको लाइक प्राइवेट सेक्टर बैंक में या इंश्योरेंस कंपनी में या पोस्टल ऑफिस में हायर रेट क्योंकि हायर रेट कहाँ मिलता है हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट में
कुमार साहब मेरी आपसे आपको सलाह होगी कि आप डाकघर की जो बचत योजनाएं हैं उसमें आप पैसा लगाएं क्योंकि वहां पर जो इंटरेस्ट रेट है चाहे वो रेकरिंग
थोड़ा रिपीट कर सकते हैं सर प्लीज
पोस्ट ऑफिस के
पोस्ट ऑफिस के जो स्कीम्स होते हैं जो इसको हम लोग स्मॉल सेविंग स्कीम्स कहते हैं चाहे वो मंथली स्कीम हो चाहे रेकरिंग डिपॉजिट हो या फिक्स डिपॉजिट हो किसान विकास पत्र हो या फिर आप वहां पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड में लगाते हैं इन सब जगहों पर आपको ब्याज ज्यादा मिलेगा और इनमें से कुछ योजनाओं में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा तो मेरी आपसे मेरा आपको सुझाव होगा कि आप वहां पे जाएं देखिए प्राइवेट बैंक्स में भले ही इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं लेकिन उनके साथ बहुत सारे नियम और शर्तें लागू होती हैं कि इतनी रकम आपको जमा करानी है तभी जाकर के आपको इसका फायदा मिलेगा तो मुझे लगता है कि आप इनसे बच करके आप वहां पे जाएंगे तो डाकघर में तो आपको फायदा होगा
पीपीएफ इज टैक्स फ्री
इज अ 15 ईयर इट इज कॉल्ड ईईई That means you don't have to pay tax at any point of time. EE means exempt. Provided that you are opting old tax regime. Under the new tax regime, there is no tax benefit.
कोई फायदा नहीं उसमें और उसमें पैसे आप आपके रुक जाते हैं
15 साल के लिए लेकिन देखिए अभी जो 15 साल के लिए अगर आप टैक्स बेनिफिट के हिसाब से सोच रहे हैं तो आपके लिए पीपीएफ एक बेहतर विकल्प है लेकिन आपको ओल्ड स्कीम में जाना होगा और अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में है तो आपको कहीं भी कोई वो बेनिफिट नहीं मिलने वाला है
All right, we are now connected with Rajasthan. Subhash ji is online with us. Ji, Subhash ji, sawal puchhiye apna.
Namaskar, Market Mantra.
Namaskar, ji.
Main ek retired officer hoon, public sector undertaking se. Mere ko domiciliary treatment ke liye annually kuch amount milta hai. Mere ko janna tha ki ye amount taxable hai ya nahi. Aur dusra question ye tha ki...
Subhash ji, ek minute, kis treatment ke liye aapne kaha?
ये डोमिसिलरी मतलब ट्रीटमेंट होता है मतलब कुछ भी आपको कुछ होता है बीमार तो आप ये कंपनी मतलब दे देती है हमको
अच्छा यानी कि आप वहाँ पर रीइंबर्समेंट ले लेते हैं जो भी आप
रीइंबर्समेंट नहीं है कंपनी दे देती
अच्छा फिक्स्ड अमाउंट है आपके लिए
साल का फिक्स्ड अमाउंट
ओके ठीक है
तो क्या वो टैक्सेबल है ये जानना था
ओके दूसरा सवाल आपका
दूसरा सर ये था पीपीएफ के अंदर जैसे मेरे को 30 साल हो गया अभी मैं उसको एक्सटेंड करना चाहता हूँ अगले 5 साल के लिए तो उस 5 साल में अगर मैं कोई अमाउंट मेरे को उसमें डालना जरूरी है क्या या मैं पैसा उससे विड्रॉ कर सकता हूँ साल में एक बार ये जानना था
पहला वाला जो आपके पर्क्स में आ जाएगा जो आपके पोस्ट रिटायरमेंट है उसमें आपको एक तरीके से जो भत्ते मिल रहे हैं रिटायरमेंट के बाद का एक बेनिफिट जो मिल रहा है वो ज्यादातर टैक्सेबल्स होते हैं तो वो एक कंपनी स्पेसिफिक के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो आपको किस तरीके का देते हैं तो वहां पर एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा। लेकिन जहां तक मेरी समझ है कि ऐसे पर्क्स जो है वो टैक्सेबल होते हैं। दूसरा, जहां तक पीपीएफ के रिन्यूअल का सवाल है, देखिए पीपीएफ के रिन्यूअल कराने में बिल्कुल सही फैसला होता है कि आपको साल दर साल ऊंचे ब्याज दर का भी फायदा मिलता है, एक तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो जाता है, एक बड़ी रकम मिलती है, और सबसे बड़ी बात है कि उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, बशर्ते कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में, अगर न्यू में अगर आप आ जाते हैं तो जो भी आपको सुविधाएं अब तक मिल चुकी है वो ठीक है, लेकिन नए आपको उसमें जो है वो नहीं मिलेगी। क्या आप पैसा निकाल सकते हैं? ये थोड़ा सा मुझे इसके ऊपर विचार करना होगा। जहां तक मेरी समझ है कि शायद आप 5 साल के बाद लोन के तौर पे जो है वो पैसा निकाल सकते हैं, बाद में आपको रीइंबर्स करना पड़ता है उसको।
जी, अगले कॉलर है हरियाणा से राजेंद्र। राजेंद्र जी स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
नमस्कार। हाँ जी, मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमें शेयर मार्केट में पहली बार हम इन्वेस्ट करना जा रहे हैं, क्या हमारे को जानकारी नहीं है तो ये क्या ठीक रहेगा? और दूसरा सवाल, क्या हमारे पास एफडीओ है? एफडीओ में क्या हम बने रहे हैं कि हमारे पास लगभग करीब 25-30 लाख की एफडीओ है?
देखिए, शेयर बाजार अभी जिस मुकाम पे है और जिस तरीके का उतार चढ़ाव है, और पहली बार अगर शेयर बाजार में जाना चाहते हैं तो ये समय उचित नहीं है, आपको नहीं जाना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी का रास्ता है, वो आपके लिए बेहतर होगा। आप और भी दूसरे विकल्प को अपना सकते हैं, लेकिन शेयर बाजार के लिए मेरी सलाह होगी कि अभी ना जाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है। और दिक्कत ये भी है कि जब अभी ऊंचाई पे है, अगर आप ऊंचे पे इंटर करते हैं तो आपको इंतजार करना पड़ेगा और ऊंचा जाए ताकि आपको मुनाफा हो सके। और हमारी दिक्कत यह है कि हमें 1 रुपए का मुनाफा होता है तो हम 1.5 रुपए की सोचने लगते हैं, फिर 2 रुपए की सोचने लगते हैं, और ये जो सांकेतिक घाटा और मुनाफा है ये हमें जिसे कहा जाए कि ये हमारे लिए ज्यादा परेशानी बन जाती है। तो खैर, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा जो आपका प्रश्न है फिक्स डिपॉजिट में, देखिए जो आपने पैसा फिक्स डिपॉजिट में आपके पास है, जो मेच्योर्ड हो चुका है या जो आपने जमा कर रखा है, जिस तारीख को आपने जमा किया था उस तारीख को जो ब्याज दर थी वो ब्याज दर आपको मिलेगी, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जब आप रिन्यू कराने जाएंगे तो उस तारीख को जो ब्याज दर होगी उस पर आपको रिन्यूअल करना होगा। तो अभी कई बैंकों ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरें बढ़ाई हैं, तो आप रिन्यू करा सकते हैं अगर आपको पैसे निकालने की जरूरत नहीं है तो।
ऑलराइट, वी आर कनेक्टेड टू योगेश शर्मा फ्रॉम दिल्ली। योगेश जी, प्लीज आस्क अ क्वेश्चन।
थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी को। सर, मेरा सवाल यह है कि ये बाजार में कहते थे पहले के जमाने में ऑपरेटर काम करते थे और रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप करते थे, तो क्या आज भी बाजार में ऑपरेटर होते हैं, और क्या इनसे बचने का कोई पैमाना या कोई तरीका ऐसा है कि रिटेल इन्वेस्टर इनसे बच सकते हैं?
योगेश जी, काश ये गुण मेरे अंदर भी होता कि मैं आपको ये बता पाऊं कि उनसे कैसे बचा जाए। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि वित्तीय साक्षरता हमारे यहाँ बहुत कम है, फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे कम है, तो मार्केट की जो तकनीकी चीजें हैं ना उसको समझना इतना आसान नहीं होता है। या तो आप निवेशक होते हैं या कारोबारी होते हैं। तो जब आप निवेशक होते हैं, खुदरा निवेशक होते हैं, छोटे निवेशक होते हैं, तो एक निश्चित समय के लिए आप पैसा लगाते हैं। अगर आप हर सेकेंड और हर मिनट और हर घंटे के हिसाब से बाजार में चलना शुरू करें तो आप एक कारोबारी हो जाते, तो बाजार की अपनी भाषा है वो समझनी पड़ती है। तो अगर मैं बहुत संक्षिप्त में आपके सवाल का जवाब दूं तो ये इतना आसान नहीं है कि बाजार की जो गहराई है उसको एक बाहर बैठ करके आप समझ सकें।
तब तक हम यही कह सकते हैं योगेश जी, मार्केट मंत्रा सुनते रहिए तो फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ती रहेगी, ऐसी आशा हम रखते हैं।
ऑलराइट, कॉलर है हमारे पास मद्रास से, रमेश है। रमेश स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
हेलो
जी। हेलो रमेश, सवाल पूछे।
Good evening.
I'm calling from Madhya. I'm a PhD student.
Yeah.
I have invested in mutual fund about 10 years back in various companies. I am single. Okay. I don't have anybody now. So I just want to know what is the procedure. Suppose can I give this money to some of my acquaintances or friends, anybody?
You can gift it, but the person, if he is not, he or she is not your blood relation, then it will be a taxable thing. So if you are giving it to any of your blood relative, the Income Tax Act defines who are your blood relatives, the near one and the closed one. So that the tax treatment you have to keep in mind, and you can certainly donate to anyone else, and there should not be any problem in that.
All right, we are now joined by Gaurav from Ghaziabad. जी गौरव जी, सवाल पूछिए। जी
Good evening, Market Mantra team.
Good evening.
So my question is, which sector, last time also I asked, will now be shining if FII do return? And ye jo bhi aaye hain, kya FII ki aane ki wajah se chamak aayi hai thodi si, ya it is because of some other reason? And finally, if government of India is reducing tax limits and enhancing it up to 12 lakhs, does it expect the rupee to buying power to go down so much that or what is the reason for reducing the tax taxation increasing the taxation limits? Yeah.
Coming to your first question about the sectoral, I mean, at this moment, I believe the financial sector is one area where we are seeing a lot of good potential. We are also seeing in the FMCG good potential because of more spending we are expecting from the people who are having more income in the hand after this new tax law. Talking about your second part of your question, that whether it is because of FII or because of any other region, I believe it's a combination of both, domestic as well as the FII. It's not just alone the FII who are pushing the market up.
जी, ये अगली खबर पे नजर डालते हैं. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 34 पैसे बढ़कर 85.64 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच गया. भारतीय मुद्रा में लगातार 9वें कारोबारी सत्र में तेजी बनी रही. उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक अंतर दिवसीय कारोबार में 103.91 पर चल रहा था. और एशियाई शेयर बाजारों पर भी नज़र डाल लेते हैं. आज वहाँ मिला जुला रुख रहा है और हांगकांग का हैंगसेंग 0.9%, सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स भी 0.25% और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.1% ऊपर रहा. उधर साउथ कोरिया का कोस्पी 0.4% नीचे आ गया और जापान के निक्केई में 0.2% की गिरावट देखी गई. यूरोपीय बाजार पर नजर डालें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां तेजी का रुख था. जर्मनी का डैक्स 0.4% ऊपर था, जबकि फ्रांस के कैक और लंदन के फुटसी दोनों में 0.1% की बढ़त दिख रही थी.
Let's take a look at the oil prices now. Well, oil prices rose in choppy trade today as investors weighed the impact of fresh U.S. sanctions on Iranian oil exports. Brent crude was trading almost 0.7% up at $72.66 per barrel. WTI crude was trading over 0.7% up at $68.81 per barrel when reports last came in. And what's news about the yellow metal, Subodh? The gold.
Sarrafa Bazaar mein सोना आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था. अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट का सोना 0.09% गिरकर 88,130 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था. वहीं चांदी 0.24% बढ़कर 98,330 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक अप्रैल 2025 में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.12% गिरकर 87,676 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था.
शशिर जी, कुछ स्पष्टीकरण था जो पीपीएफ का इन्होंने कहा था कि रिन्यू करने के बाद क्या करेंगे, तो 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो साल में एक बार है और 5 साल के पहले आप खाता बंद नहीं कर सकते हैं.
Okay, all right. And a quick comment on gold. Gold manufacturers seem to be having a tough time because I believe there's a liquidity crunch and because people are not buying now because of the high prices.
Yeah, certainly. I mean, buying a gold from wholesale market is now getting difficult because of the higher prices. And since you are getting gold at higher prices, the jewelry prices will also be high. Mm-hmm. So it's a double whammy for the gold traders.
Mm-hmm. But still, India will continue to buy gold because our hunger for gold
is an emotional investment. It has nothing to do with the monetary value.
वैसे बाजार संभलने के जब भी रुख देखते हैं तो गोल्ड थोड़ा तो गिरता है.
वैसे भी कहते हैं ना, भारत में हम लोग सोना खरीदते नहीं, सोना में भावनाओं का निवेश करते हैं, हमारा इमोशन है.
जी बिल्कुल सही बात है. शिशिर, कार्यक्रम में आने और प्रश्नों के बहुत अच्छे उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
धन्यवाद.
All right, friends, on that golden note, let's wind up the program. But before that, here's a look at the headlines once again. Well, benchmark domestic indices climb over 1%. Sensex surges over 1,070 points. Nifty closes above 23,650. In the forex market, rupee rises against the US dollar for ninth straight session. And crude oil prices rise. Brent crude trades at $72.66 per barrel. Well, friends, that's all we have for you in this edition, or rather Monday edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Subodh Mishra and our expert Shishir Sinha signing off. We'll see you again tomorrow, same time, 6:30. Same time, same frequency. Till then, namaskar. Oh,